दोस्तों, मैं रीता एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरी पिछली कहानी नंगे बदन पर ज्वेलरी के साथ फ़ोटोशूट का आपको जो प्यार मिला वो काबिले तारीफ़ है। आपके प्रतिसाद से हमें उतनी ही चरम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर से मैं वही कहना चाहती हूँ कि ये सब हमारे दिल की दबी हुई इच्छाएँ हैं जो अंतर्वासना के मंच पर साझा कर रही हूँ। मैं और सीमा कोई बाजारू लड़कियाँ नहीं हैं। उस कहानी में मैंने एक सराफ की दुकान में नंगे बदन सोने के खूब सारे गहने पहनकर फ़ोटोशूट किया था। दुकान के मालिक को बदले में हमने उसका लंड चूस कर मज़ा दिया था। उसने हमें एक सोने की अंगूठी उपहार में दी थी। रवि की अंगूठी देने के बाद हमने रवि की मुठ मार मार कर उसे 3-4 बार निढाल कर दिया था। और सच कहें तो हम रवि से चुदवाना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने वो ताकत ही नहीं छोड़ी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रवि के बारे में नहीं है। ये कहानी मेरी मामी यशोधरा और उनकी बेटी रीमा की है, जिनके साथ मिलकर हमने एक टास्क किया, या कहें ये कांड ही कर दिया। हमारे पूरे परिवार में मैं सिर्फ मेरी मामी से ही बनती है। हम जो जो कारनामे करती हैं उसके बारे में मामी जानती ज़रूर है, जिस पर वो भी कभी कभी अपनी हसीन हादसों को अंजाम देने का मन बना ही लेती हैं, लेकिन बाद में खुद को उंगली कर शांत के इरादे से पानी फेर देती। रवि के साथ किए फ़ोटोशूट को 2 महीने के ज़्यादा का समय बीत चुका था। मामा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए थे तो मामी हमें उनके घर पर छुट्टियां बिताने बुला रही थी। मामी की ये बात सुनकर सीमा ने मुझसे मामी के घर जाने को कहा। सीमा की इस बात से मैं खुश हो गई और मामी के घर जन्माष्टमी पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। जहाँ मामा रहते थे वो 5 विंग वाला अपार्टमेंट था, यानी ABCDE। मामी सेविंग वाले पहले माले पर रहती थी। जब हम घर पहुंचे तो हमने पाया कि मामी की छोटी बहन रीमा भी छुट्टियां बिताने आई है। वैसे तो रीमा मामी से 2-3 साल ही छोटी थी, लेकिन अभी तक हमारी तरह कुंवारी ही थी, जो कांड करने के ख्वाब लेकर मामी के घर आई थी। रीमा को मामी के घर देखकर उनके पर पानी फिर गया, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। हमारे इशारों की भाषा को मामी ने समझ लिया और कहा, अरे इतना भी मुरझाया ना करो, अभी अभी तो आई हो, बाद की बाद में देखेंगे। मामी की ये बात सुनकर हम ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और सामान्य होने का प्रयास करने लगी। शाम को पहुंचने के बाद इधर उधर की बातें हुई और रात हो गई। बातें करते करते सीमा ने रीमा की शादी के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि अभी तक शादी नहीं हुई है और उसे अपने पड़ोस में रहने वाले किसी लड़के पर क्रश भी था। फिर रीमा ने हमारी शादी के बारे में पूछा। रीमा ने जो सवाल किया उससे मुझे हल्की सी उम्मीद की किरण दिखी कि शायद कांड किया जा सकता है, और तो और मामी के साथ साथ शायद रीमा को भी शामिल किया जा सकता है। रीमा की बात को थोड़ा अनसुना करने पर मैंने मामी को एक मैसेज भेजा, जिसमें पूछा कि क्या वो रीमा हमारे साथ कोई टास्क करेगी। मैं भी कोई टास्क करने को तैयार हूँ, अगर रीमा तैयार होती है तो। अगर रीमा नहीं मानती तो मैं उसकी नज़रों में फिर गिरना नहीं चाहती। मामी का मैसेज पढ़कर मेरे अंदर एक उत्तेजना की लहर जागी। मेरा खुराफाती दिमाग रीमा को कैसे पटाएं इसके बारे में सोचने लगा। हाँ रीमा, तुम क्या पूछ रही थी? दरअसल मेरे कुलीग का कोई काम का मैसेज आया था तो उसको रिप्लाई करने में तुम्हारी बात को ठीक से सुन न सकी। मैंने बहाना बनाकर बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। मामी समझ चुकी थी कि मेरे दिमाग में कुछ तो पक रहा है। मैं ये पूछ रही थी कि आप दोनों की शादी हो चुकी है? हाँ, हम दोनों की शादी तो हो चुकी है। जितना रीमा ने पूछा उतना ही सीमा ने जवाब दिया। सीमा भी मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी जान चुकी थी। रीमा, इन दोनों की शादी हो चुकी है इसका अलग मतलब है, मामी ने अपनी छोटी बहन से कहा। भाई, शादी का अलग मतलब कैसे? रीमा ने कुछ न समझते हुए कहा। मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हुई है, यही एक दूसरे के पति पत्नी हैं। मामी को भी हमारी हवस की भनक लग चुकी थी और वो भी इसमें सुलग रही थी। ये कैसे हो सकता है, 2 लड़कियों की शादी? रीमा ने आश्चर्य से पूछा। रीमा के इसी सवाल से हमें हमारी बात रखने का मौका मिल गया। हमने उसे हमारी सारी बातें बताई, सारी करतूतें। रीमा हैरान रह गई। फिर तो तुम दोनों की बड़ी अच्छी कट रही है, लेकिन एक बात बताओ कि इतनी हिम्मत हो कैसे जाती है? तुम्हें डर नहीं लगता? रीमा ने पूछा। डर तो लगता है मेरी जान, ये कहते हुए सीमा ने रीमा को बाजुओं में भर लिया। लेकिन टास्क करके मज़ा भी बहुत आता है। कभी मन करे तो बता देना, हम सब साथ मिलकर कर लेंगी। तुम्हारी बड़ी बहन भी हमारे साथ कई ऐसे कारनामे करने को उत्सुक है। अगर तुम हाँ करती हो तो हम सब साथ में करेंगे। रीमा सीमा की बातें सुनकर हैरान थी और अपनी बहन के बारे में सीमा से सुन उसकी और सवाल की नज़रें देखने लगी। नहीं नहीं रीमा, तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं इनके टास्क के बारे में कभी कभी सुनकर इतनी उत्साहित हो जाती हूँ कि मैं भी सोचती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार तो ऐसा रोमांच करना ही चाहिए। अपनी बहन की बात का रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे तैसे रात हो गई और हम सो गए। लेकिन मेरी और सीमा की आंखों में नींद कहाँ। खैर, दो दिन व्यर्थ गुजरे और एक ही दिन बचा। वैसे तो हम उसी दिन निकल जाती, लेकिन बारिश तेज थी। हमने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मूड खराब हो गया। मामी, हम कल निकल रही हैं। उसी दिन दोपहर का खाना खाते हुए सीमा ने कहा, इतनी जल्दी? मैं सोच रही थी कि आपके साथ मिलकर कोई हिम्मत वाला टास्क करूँगी इससे पहले कि सीमा कह पाती कुछ। मामी की छोटी बहन रीमा ने हमारे मुरझाई हुई ख्वाहिशों को हवस की चिंगारी की आग लगा दी। क्या कहा तुमने? इतना बोलते ही रीमा के होठ पर होठ रख कर किस करते हुए मैं पूछ बैठी। मैं रीमा की बात सुनकर इतनी उत्साहित हो चुकी थी कि मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं रहा कि ये सब रीमा के लिए अभी भी बिल्कुल नया था। और तो और, मामी की छोटी बहन को भी उनके सामने लिप किस करना थोड़ी अलग बात थी। खैर, अब फ़र्क भी क्या पड़ता था। देखो, सोच लो रीमा, फिर आधे रास्ते में मुकर मत जाना, सीमा ने अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा, जिस पर मामी भी सवाल भरी निगाह से देखने लगी। अब जो भी था रीमा के ऊपर था। नहीं नहीं, मैंने मन बना लिया है, कम से कम एक बार ज़िंदगी में मज़ा तो करना ही है, तो फिर ठीक है। लेकिन अब करेंगे भी क्या? मामी ने पूछा। कुछ सोचते हैं, खाना खाते हुए मैंने कहा। कुछ ही देर में खाना ख़त्म हो गया। हमने साथ मिलकर बर्तन मांजे ताकि कोई ना कोई आइडिया सोच सके, लेकिन मैं भली भांति जानती थी सोचने का काम या तो मेरा है या फिर सीमा का। क्या करेंगे? ये सोचते सोचते मैं खिड़की से बाहर रास्ते की ओर देख रही थी। बारिश बहुत तेज थी, वक्त का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता था। इसी सुनसान रास्ते को देख कर मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया, लेकिन इसके लिए बारिश का इसी तरह बरसना बहुत ज़रूरी था। मामी, एक कागज़ और पेन मिलेगा क्या? मैंने पूछा। लेकिन अभी तो हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ना, मामी ने कहा। अरे दीजिए तो सही। जब मामी ने मुझे पेपर दिया तो मैंने उसमें से कागज़ फाड़ा और चार पर्चियाँ बना ली। रंडी, कुलटा, जुदक्कड़, वेश्या, ऐसे नाम से। पर्चियों पर लिखे नाम से सीमा के अलावा मामी और उसकी बहन दोनों हैरान थे। इससे पहले कि मामी और रीमा पर्चियों पर लिखे नामों के बारे में पूछती, मैंने उनको मेरा प्लान बता दिया। अब बस हम यही दुआएं कर रही थी कि ये बारिश रुके नहीं और जल्द से जल्द रात हो जाए। रात के 8 बजते बजते बारिश कमज़ोर हो चुकी थी। हड़बड़ाहट में हम चारों ने खाना खाया। खाना ख़त्म होते ही बारिश बिल्कुल ना के बराबर थी, पूरे दिन लगातार थी। अब विराम लग गया, लेकिन रुकने से हमारे सारे अरमानों पर पूर्ण विराम लग चुका था। अब हम कुछ भी नहीं कर सकती थी। हमने जो कुछ भी सोच कर रखा था सब प्लान हो गया। हम फिर वैसे ही मनवार के सो गई। लेकिन कहते हैं ना, जो भी चीज़ दिल से चाहो वो मिल ही जाती है। रात के करीब 11 बजे बारिश तेज शुरू हो गई। हम अब तैयार थे, लेकिन एक और ख्याल था कि यदि बारिश चालू टास्क के दौरान रुक गई तो। आखिर हमने हिम्मत जुटाई और ये सोचकर कपड़े उतारने लगी कि बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने और सीमा ने तुरंत कपड़े निकाल दिए। हमारे लिए कपड़े उतारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मामी और रीमा के लिए बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात थी। हमें नंगे देख उन्होंने भी कपड़े निकाल फेंके। फिर हमने पर्चियाँ निकाली और एक एक कर सब ने अपनी पर्चियाँ खोली। मेरी पर्ची में रंडी, सीमा की में कुलटा, मामी की में चुदक्कड़ और रीमा की में वेश्या लिखा था। अलमारी से लिपस्टिक निकाली और सबकी पीठ पर उनकी पर्ची में आए हुए नाम लिख डाले। अब हमें करना ये था कि मामी के सेविंग के माले से नंगे ग्राउंड फ्लोर पर जाना और फिर एविंग से शुरू करते हुए उसकी छत पर जाना। वहाँ हम में से कोई बारिश में नहाकर अपनी पीठ से वो नाम धोएगी और फिर ए विंग की छत से बी विंग की सीढ़ियों को लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे। फिर सी विंग की छत पर चढ़कर किसी एक को बारिश में नहाकर अपनी पीठ पर लिखा नाम मिटाना है, मतलब कि हम सबको एक साथ पूरे अपार्टमेंट की सारी मंजिलों का नंगा सफ़र तय करना है। हमने दरवाज़ा खोला और जैसे कोई चोरी करने के लिए जाता है पहले देखकर मुआयना किया, ठीक वैसे ही, और फिर निश्चिंत हो गई। खैर किस्मत साथ थी, सारे घरों के मुख्य दरवाजे बंद थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि हम बेफिक्र हो जाएं। हमको हर जगह सावधानी बरतनी थी, क्योंकि ये केवल हमारी ही नहीं मामी और रीमा की भी इज्जत का सवाल था। हम धीरे से दरवाजे के बाहर निकले। मूसलाधार बारिश की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी और कोई हमें देख ना ले ये सोचकर जोर से दिल धड़क रहा था। मामी और सीमा तो कांप रही थी, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, अंदर से हम भी डरे हुए थे। धीरे धीरे कर हम ग्राउंड फ्लोर पर आए। हम सब देख रही थी और कांप रही थी। हम जल्दी से ए विंग की ओर भागे और सीढ़ियां चढ़ने लगे, लेकिन किस्मत उतनी मेहरबान भी नहीं थी। ए विंग की पहली ही मंजिल पर एक दरवाज़ा खुला था और लाइट भी जल रही थी। एक बुढ़िया कुछ यूं ही बड़बड़ा रही थी। सबके आगे मैं थी और अंत में सीमा। मामी मेरी जगह ही उन्होंने बुढ़िया को पहचान लिया। उसकी दूर की नज़र बेहद कमज़ोर थी। हमने सोचा कि कितनी देर इंतज़ार करेंगी, यहीं रुक जाती तो कोई नीचे से आ जाएगा। हम हिम्मत जुटाकर एक एक करके आगे बढ़ी। बुढ़िया ने हमें देखा लेकिन कुछ बोल ना सकी। थोड़ी और सीढ़ियाँ चढ़कर हमने राहत की सांस ली। दिल तो मानो ऐसे धड़क रहा था अभी बाहर निकल आए। यूं ही छिपते छुपाते हम सब छत पर पहुंच गए। इतनी बारिश के कारण मौसम बहुत ठंडा हो चुका था। सबके पहले रीमा ने बारिश में नहाकर अपनी पीठ पर लिखे हुए शब्द को मिटाया, क्योंकि उसका हाथ ठीक से पीठ पर पहुँच नहीं पा रहा था, तो सीमा ने मदद की। अब रीमा और सीमा दोनों भीग चुकी थी और ठंड के मारे कांप रही थी। अब हमने बी विंग की छत से नीचे उतरना शुरू किया और कोई नीचे तक मिला नहीं। एक और बार हम ग्राउंड फ्लोर पर थी। ठंड के मारे रीमा और सीमा का बुरा हाल था। हमने सोचा कि अब की बार छत पर सीमा बारिश में नहाकर अपने पीठ पर लिखे कुल्टा नाम को मिटा देगी और मैं मदद करूँगी। ऐसा सोच ही रहे थे तभी एक लाइट चली गई और घनघोर अंधेरा हो गया। लेकिन टास्क को दोस्तों करना ही था। हम सी विंग से चढ़ते हुए छत की ओर बढ़ने लगे। तीन माले चढ़ने पर हमने देखा कि एक हमारी उम्र का लड़का दरवाजे पर बैठकर सिगरेट पी रहा है। हम चोरी छिपे देख रही थी, अंधेरा होने के कारण वो मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन वहाँ से गुजरती तो यकीनन देख लेता। मैंने उसे अच्छे से देखने की कोशिश की। उसने शायद सिर्फ एक अच्छा ही पहन रखा था, ऊपर से उसका लंड अधिक मोटा हो चुका था। वह अपने लंड को सहला भी रहा था और लग रहा था फ़ोन में कुछ पॉर्न वीडियो देख रहा है। अब हम ये सोच रहे थे आखिर इंतज़ार क्यों। हम कुछ देर तक उधर खड़ी रही, लेकिन करीब 10-15 मिनट, वो 10-15 मिनट हमारे लिए कई सालों जैसे थे। आखिर वो वक्त आया जब वो लड़का अपना कच्छा नीचे कर लंड को हिलाने लगा। आनंद में उसने आंखें बंद कर ली। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने मामी और रीमा को ऊपर भेज दिया। अब बारी सीमा की थी। सीमा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ गई, लेकिन मेरी नज़र उसके बड़े लंड और सुपारे से हट ही नहीं रही थी। उधर वो तीनों मेरे आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और इधर मैं थी कि बिना किसी भय के उसको लंड हिलाते हुए देख रही थी। कुछ ही फलों में उसका ज्वालामुखी फटा, जिसमें से श्वेत लावा बह निकला। मैं चाह रही थी उसका सारा लावा पी जाऊं, लेकिन इतने में ही वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आया और कच्छा पहनकर अंदर चला गया और मैं भी उसके वहां जाते सीढ़ियां चढ़ गई। फिर एक एक करके चार न्यूड गर्ल्स ग्रुप टास्क को अंजाम दिया। देर रात होने के कारण हमें कोई नहीं मिला। मेरी बारी आते आते बारिश भी ख़त्म हो गई और मैं बिना नाम मिटाई घर पर चली आई। घर पहुंची तो बहुत उत्तेजित थी और खुश भी। हम बिना अपने शरीर को पोछे बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं मामी के बाजू में, मेरे बाजू में सीमा और फिर कोने में रीमा। मैंने मामी को अपने आगोश में भर लिया और उनके होठों पर बेतहाशा चुंबन किया। कुछ देर बाद न जाने कब हम चारों सो गए और पता ही नहीं चला अगली सुबह हमने क्या किया। मौका मिलेगा तो किसी दिन ज़रूर बताऊँगी।